ਉੱਠ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਉਤਾ ਰੂਪ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਣੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਖੁਦ ਬੋਲ ਕਰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਯੇ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁਸ਼ ਕੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਦੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਬੇਚੈਨੀ ਕੇ ਅਲਾਵਾ ਸਾਰ ਰੂਪ ਮੇਂ ਅਨ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛੋ ਕਾ ਨਿਰਣੈ ਹੈ, ਏਕ ਦੋ ਕਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੋ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਸ਼ ਯਹਾਂ ਆਕਰ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਕਭੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਮਨੁਸ਼ ਕਭੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਕੋ ਜੋ ਹਮ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਯੇ ਤੀਨ ਗੁਣੋਂ ਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਕੋ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਨ ਤੀਨ ਗੁਣੋਂ ਮੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਸ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਸਭ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤਮੋ ਗੁਣ ਯੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵਨ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਦੁੱਖ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਤਮੋ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਜੋ ਮਨੁਸ਼ ਕੋ ਕਰਮੋਂ ਮੇਂ ਲਗਾਏ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਚੈਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਰਜੋ ਗੁਣ। ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੜੇਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮੋਂ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਫਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਨੁਸ਼ ਕਿਤਨਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਤੋ ਰਜੋ ਗੁਣ ਔਰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਇਸਮੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਸੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਨੁਸ਼ ਕੋ ਬੇਚੈਨ ਕਰ। ਤੀਸਰਾ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਓਰ ਲੈ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਬ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਨਿਕਲਨੇ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਸਕਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ। ਇਸੀ ਲਈ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹਮ ਜਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਕਾ ਵੋ ਨਿਰਣੈ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋ ਤਨ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿਤ ਉਦਾਸ, ਕੋਈ ਤੋ ਤਨ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿਤ ਉਦਾਸ, ਏਕ ਏਕ ਦੁਖ ਸਵਨ ਕੋ ਸੁਖੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦਾਸ। ਅਬ ਬਤਾਈਏ, ਮੈਂ ਜਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਹਮ ਜਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੂੰ, ਯੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਕਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਅਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਝੇ ਸੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਵੋ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਵੋ ਸੁਵਿਧਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੇ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੇ ਆਈਟਮ ਹੈ ਸੁਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸਕੀ ਆਪ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੀ ਪਤਨੀ ਕਾ ਇਤਨਾ ਖਰਾਬ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੋ ਏਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਚੈਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ। ਅਬ ਬਤਾਈਏ, ਆਪ ਤੋ ਉਸਕੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਬਾਹਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਯਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਕੀ ਪਤਨੀ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕੈਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਵੋ ਦੁਖੀ, ਆਪਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਤੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਸਕੇ ਲਈ ਨਾ ਦਿਨ ਮੇਂ ਚੈਨ ਨਾ ਰਾਤ ਮੇਂ ਚੈਨ। ਤੋ ਉਸਕਾ ਏਕ ਆਈਟਮ ਹੀ ਬਿਗੜ ਹੁਆ, ਕੇਵਲ ਏਕ ਆਈਟਮ ਬਿਗੜ ਹੁਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਕੀ ਦੁੱਖ ਮੇਂ ਬੇਚੈਨੀ ਮੇਂ ਬੀਤ ਰਹੀ। ਅਬ ਇਸਕੋ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਸਥੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਯਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਸੰਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਕਾ ਨਿਰਣੈ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਸਤਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਮਕੋ ਸਿਖਾਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਮਾਰੇ ਮਨ ਕਾ, ਹਮਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਕਾ, ਹਮਾਰਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ, जो उसके उस अंसाज में सोता हूं, तब मेरी बुद्धि इस निर्णय पे पहुंचती है कि संसार में चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो, संसारी तरीके से आप सुखी हो ही नहीं सकते। ये फाइनल निर्णय सारे संतोषों दुख के आइटम सकते अलग अलग हैं, लेकिन दुखी सारे। इसीलिए सहजो भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि कोई तो तन मन दुखी, कोई तन से दुखी है, शरीर उसका रोगी है, परमानेंट रोग, कोई मन से दुखी है क्योंकि मन में तो तरंगे उठती है इच्छाओं की, वासना की, वो कितनी पूरी हो पाती है। तो कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास। अब चित कहते हैं चेतना, और चेतना कहाँ है हमारी, बुद्धि में चेतना। तो बुद्धि में जो चेतना है तो इसका मतलब कि बुद्धि जानती है, अर्थात मैं कहता हूं मैं जानता हूं, और मैं ये भी कहता हूं कि मैं समझता हूं, जो मेरी समझ है वही मेरी बुद्धि का निर्णय है। तो अपनी समझ के मुताबिक मैं निर्णय करता हूं और उस निर्णय के अनुसार मैं कर्म करता हूं। लेकिन सहजो भाई कह रही कि कोई चित उदास, तन और मन का दुख तो हम जानते हैं लेकिन चित्त की उदासी का दुख हम नहीं जानते, ये कैसा होता है। कुछ लोग विचारवान होते हैं, विचार करते हैं, विचार से संसार को देखते हैं, उनकी बुद्धि इस निर्णय पर पहुंच चुकी होती है कि सत्पुरुषों की बातें पढ़ते हैं या अपने ज्ञान के अनुसार संसार का एनालिसिस करते हैं, तो उनकी बुद्धि इस निर्णय पर पहुंच जाती है कि मैं संसार में कुछ भी क्यों ना कर लूं, क्योंकि चैन मुझे नहीं मिलेगा। बुद्धि का निर्णय उनका यह बन जाता है, चैन मुझे नहीं मिलेगा। अब बताइए, बेचैनी लेकर मैं पैदा हुआ, बेचैनी लेकर जीता रहा, बेचैनी लेकर ही मैं मर जाऊंगा, ये कैसा जीवन है। इसलिए ऐसी बुद्धि के अंदर, ऐसे चित्त के अंदर उदासी आना, उदास हो, सब कुछ है उसके पास, मान लिया दूसरों की दृष्टि में उसके पास सब कुछ, कि उसका चित्त उदास, तो एक एक दुख सवन को सुखी संत का दास। सबको कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, इससे कोई बचा नहीं है। इसी मां जी की वाणी भी कह रही है, दुख में ही नर जन्म या, दुख में जन्म गवाए, मंगत देहधारी जो आया, तीन काल दुख पाए। तीन काल कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में भी मैं दुखी रहा, बेचैन रहा, प्रेजेंट में भी मेरी वही हालत है और भविष्य में भी वही होगी। अब बताइए, लोग तो कुछ दूसरा पाठ पढ़ाएंगे, ये कोर्स कर ले तू, ये बिजनेस कर ले तू, ये जॉब कर ले तू, सुखी हो जाए। इस निर्णय का कोई आधार ही नहीं। इस निर्णय का आधार तो तब सही माना जाएगा जब जिसने ये प्रकृति बनाई है, जिस ईश्वर ने इस प्रकृति के रहस्य को उजागर किया है वाणी के द्वारा, मैं यदि उस ज्ञान को समझूं, समझ के मेरी बुद्धि उसके अनुसार निर्णय करे, तब पता लगेगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि दुख में ही नर जन्म या, दुख में जन्म गवाए, वर्तमान जीवन भी मैं मानसिक बेचैनी लेकर ही व्यतीत कर रहा हूं। मंगत देहधारी जो आया, तीन काल दुख। इसलिए महर्षि रमण से पूछा गया जब, महर्षि एक चीज बताइए, ईश्वर खुद तो कहते हैं आनंद रूप, लेकिन संसार में उसने इतना दुख क्यों पैदा कर दिया। अब तो ऋषि है ना खुद ईश्वर, वो कह रहे हैं कि ईश्वर ने संसार में दुख इसलिए पैदा कर दिया ताकि तुम ईश्वर की तरफ चल सको। प्रभु के स्मरण कारण ने ये दुर्लभ जीवन पाए, मानुष जन्म सफल हुए जब प्रभु दाता चित आए। मनुष्य तुझको, ये अद्भुत प्राणी तुझको इसलिए बनाया गया ताकि मानव जन्म लेकर तू ईश्वर के अनुभव को प्राप्त कर सके इस देह के अंदर ही, और तू पशुओं की नकल कर रहा है, पांच ज्ञान इंद्रियों के जो भोग हैं वो भोग रहे हैं, तू भी भोग रहा है, वो भी गुलाम है परेशान है, तू भी गुलाम और परेशान है, तो अंतर क्या है? इसलिए वाणी साफ निर्णय कर रही है कि बिना विवेक मनुष्य जो होई पशु समान जीवन सो होई, तेरा जो जीवन है वो सोच विचार का जीवन नहीं। मनुष्य हो विचारवान होना चाहिए ना, बुद्धि दी ना भगवान ने पशुओं को तो नहीं। यदि मैं उस बुद्धि को सतबुद्धि में नहीं बदलने को तैयार हूं, उस तरह के विचार मैं सीखने को तैयार नहीं हूं, तब पशु से मेरी तुलना वाणी कर रही है तो क्या गलत करे? मैंने जानकर एफर्ट करके दुख रूप जीवन स्वीकार किया, लेकिन बुद्धि में अज्ञान है इसलिए मेरी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पा रही, इसलिए सत्पुरुषों की वाणी उस निर्णय को हमारे सामने पेश कर रही है कि दुख में ही नर जन्म या दुख में जन्म गवाए, मंगत देह धारी जो आया तीन काल दुख पाए। लेकिन रास्ता भी कोई है इससे निकलने का, कोई रास्ता है क्या? उसके लिए सहजो भाई कह रही है सुखी संत का दास, केवल संत का दास सुखी हो सकता। ये सुख कौन सा होगा? किसी संत की आप शिष्य बन जाइए, उसके मार्गदर्शन अनुसार अपना सांसारिक जीवन व्यतीत करिए, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सुखी हो जाओ? महाराज जी के जीवन को देख के आपको कभी पता लगेगा ये सुखी इंसान है? क्योंकि उनके पास तो इंद्रिय भोगों का कोई सामान ही नहीं, इसलिए उनको देख के आपकी बुद्धि ये कैसे निर्णय करेगी कि महाराज जी सुखी? तो कौन से सुख की बात कर रहे हैं कि सुखी संत का दास? इस सुख का नाम ही इंद्रिय सुख नहीं होता जिससे हम परिचित, इस सुख का नाम ही आनंद है, इस सुख का नाम ही शांति है। इस सुख का नाम ही निर्वाण है, इस सुख का नाम ही मोक्ष। तो ये वो सुख है जो संसार की या प्रकृति की कोई ताकत जिसको खत्म नहीं कर सकती। इसीलिए जब सुख की बात आती है तो क्या कहते हैं? मां जी की वाणी कह रही है कि प्रभु की आज्ञा दृढ़ कर ध्याय जो ज्यो साहब वरता हो। अब देखिए वो सुख कैसा होगा, कैसे प्राप्त होगा? प्रभु की आज्ञा दृढ़ कर ध्याय ज्यो साहब वरतावे, सत साधु की प्रीत पछाने दुख सुख में धीर लगावे। जो सत साधु होगा जैसे कि महाराज जी हैं, महर्षि रमण है, सहजोबाई हैं, कबीर हैं, ये सत साधु सतपुरुष हैं, सतगुरु हैं। तो ये वो सुख का रास्ता कौन सा दिखा रहे हैं कि प्रभु की आज्ञा दृढ़ कर ध्याये ज्यो साहब पर, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। मैं संसार में आकर ये अहंकार धारण करके जीवन व्यतीत करता हूं कि जैसी मैं कोशिश कर लूंगा, जैसा पुरुषार्थ कर लूंगा मैं, वैसा ही ज्यादा से ज्यादा सुखी हो जाऊंगा, ये मेरी धारणा है, मेरे बुद्धि का निश्चय है। लेकिन तेरा शारीरिक जीवन प्रारब्ध के अधीन, शरीर तेरा प्रारब्ध से बना हुआ और उस प्रारब्ध का तुझे पता नहीं। तेरे शरीर को जो आज भी जीवित रखे हुए है, तेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, देखभाल करने वाला तेरा कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी तेरा शरीर जीवित रखे हुए है। और जो शरीर का प्रारब्ध है, जब तक वो कर्म सारे शरीर देह से नहीं हो जाएंगे, ये शरीर तेरा समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये प्रारब्ध मेरा ही शरीर का नहीं है, सत्पुरुष के शरीर का भी प्रारब्ध, वो भी इस प्रारब्ध से बंधे हुए। इसलिए महाराज जी का जब अंतिम वक्त था, लास्ट विजिट उनकी अंबाला की, जिस समय वहां से लगभग एक महीना रहने के बाद चलने वाले थे, तो सारे प्रेमी भाई इकट्ठे थे, संगत तो काफी फैल चुकी थी, तो सब प्रेमी प्रार्थना कर रहे थे, महाराज जी हमारे कस्बे में चलिए, हमारे शहर में चलिए। महाराज ने किसी की बात स्वीकार नहीं, एक ही बात कही कि प्रेमी अब ये कहीं नहीं जाएंगे, सुबह जहां प्रभु की मर्जी होगी उधर चल जाएंगे। सवेरा हुआ, भगत जी उनके साथ बनारसी, अबोहर के एक प्रेमी थे, कपड़े का व्यवसाय था उनका, तो उनका अबोहर के प्रेमी की खींच मारती है, अर्थात वो याद कर रहा है चलो वहां चलते। अब बताइए सत्पुरुष है, कोई निर्णय नहीं कर रहा है, तो सुबह को जब जागृत हालत में आते हैं तो प्रभु का हुक्म उनको अंदर मिला है, यही कहा जाएगा कि अबोहर चलो, मां जी चले गए अबोहर, क्योंकि वो प्रेमी आया भी नहीं था वहां। सारे प्रेमी जो प्रार्थना कर रहे हैं उनको कोई उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी, जो प्रेमी मौजूद नहीं है उसकी प्रार्थना स्वीकार हो रही, चले गए वो। उसके बाद वहीं से मां जी अमृतसर तरन तारण चले गए, वहां शरीर अंत हो। तो अब बताइए एक जो सत्पुरुष है, जो सर्वसमर्थ है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो चाहे वो तुरंत जान सकता है, ऐसा व्यक्ति भी, ऐसा सत्पुरुष भी उस प्रभु के हुक्म में ही चल रहा है, क्योंकि उसको पता है देह प्रारब्ध के अधीन है, इसने जहां जाना है और जब इसका अंत होना है वो होकर रहेगा। तो पूरी तरह से जीवन जो गुरु का है वो ईश्वर पर आया है, और यही वो हमको सिखा रहे हैं कि प्रभु की आज्ञा दृढ़ कर ध्याए, जो साहब फल तावे, सत साधु की प्रीत पछाने, दुख सुख में धीर रखा। तो क्या दर्शन करा रहा है आपको, क्या दिखा रहा है, सुख दुख में धीर रखा। गुरु का जीवन उनको सिखा रहा है कि सुख दुख में एक समान रहना सीखो, मैं सुख के लिए जीता हूं और दुख से नफरत करता हूं, ऐसा कभी हो सकता है, कोई रात कोई सोना खूब जा तो रात लंबी हो जाएगी, ठीक है रात तो उतनी की उतनी रहे। तो जीवन मेरा कभी भी सुख दुख से मुक्त नहीं हो सकता, सुख का आना सुख का जाना फिर दुख का आना, यही मेरी बेचैनी का कारण है, और ये बेचैनी मेरी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, चाहे मेरे इस प्रकार के हजार जन्म क्यों ना हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो सत्पुरुष की बात पर ध्यान देता है, तो वाणी को ध्यान से पढ़ता है, तो ये वाणी क्या कह रही है कि प्रभु की आज्ञा दृढ़ कर ध्याए, जो साहब बर्तावे, सत साधु की प्रीत पछाने, दुख सुख में धीर रखा। सत साधु की प्रीति क्या होती है, उसका जो हुक्म है, उसका जो मार्गदर्शन है, उसके अनुसार यदि मैं जीवन बनाता हूं तो मेरी उस सदगुरु के प्रति प्रीति है, यदि मैं उसके मार्गदर्शन को अपनाने को तैयार नहीं हूं फिर तो मालूम है मेरी क्या दशा होती है। एक दिन एक सेठ महाराज के सामने आया, बैठ गया, वो कहने लगा महाराज जी मेरा कुछ मार्गदर्शन करिए, मैं भी चलना चाहता हूं। सदगुरु तो अंदर ही आ गए तो उसको पता ही नहीं, महाराज जी समझ गए चलने वाला नहीं है, ये तो माया में फंसा हुआ इंसान। बोले प्रेमी ये प्रभु ने बड़ी माया दी है, भोग जाके यहां क्या रखा है तुम्हें, कोई अध्यात्म की बात नहीं करी, भेज दिया उसको। तो मैं यदि त्याग करने को तैयार हूं, वास्तव में मैंने महाराज जी को गुरु रूप में अपने जीवन में धारण किया है, तो उनकी वाणी का जो निर्णय है मैंने उसको समझना पड़ेगा, उसके अनुसार त्याग करने को, उसके अनुसार चलने को तैयार होना पड़ेगा। तब जो है एक ही चीज सिखाएगा कि सुख दुख में धीर लगा। तो ये जो सुख दुख में धीर है ये कहां से आता है? कहते हैं अखंड समाधि शब्द पहचानी प्रभु पायो निर्मल धामा ग्रहण त्याग गई चित दुर्मत विरत भई मिश्रा। तो गुरु भक्ति से, गुरु प्रयाणता से मेरी अंदर क्या हालत हो जाती है? वो कहते हैं कि अखंड समाधि लग जाती है। इसका मतलब वो आनंद जिसके लिए संसार तरस रहा है, वो आनंद मेरा कभी एक सेकंड के लिए भी मुझसे दूरी नहीं होता। अखंड समाधि प्रभु पायो निर्मल धाम, प्रभु का जो निर्मल धाम है जिसको दसवां द्वार उस देह में कहते हैं कपाल में, वो निर्मल धाम में मेरी सूरत निवास कर जाती है परमानेंट। तो वो सुख मौत भी मुझसे नहीं छीन सकती, क्योंकि ना मेरी मौत है, ना प्रभु की मौत है, ना उस आनंद की मौत है। तो ग्रहण त्याग गई चित दुर्मत विरत भई निष्काम। तो जो सहजो बाई कह रही है कि चित उदास, तो चित वो बुद्धि है, उसी को सूरत भी बोलते हैं। ये चित उदास नहीं होती जब अंदर प्रभु का में लीन होती है। ये ग्रहण त्याग भई चित दुर्मत, तो चित की दुर्मति क्या है? तेरी बुद्धि का गलत निर्णय क्या है कि तू जो इंद्रिय सुख है जब मिलता है तो उसको ग्रहण करना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, उसको मेंटेन करना चाहता है, और जिससे दुख मिलता है, बेचैनी मिलती है, उसको त्याग करना चाहता है। तो एक चीज को ग्रहण करना चाहता है, एक चीज का त्याग करना चाहता है, उसे दूर भगाना चाहता है। जैसे मित्र को मैं पास रखना चाहता हूं, दुश्मन को दूर भगाना चाहता हूं, उसको ग्रहण त्याग करते हैं। कहते हैं ये चित्त की दुर्मति है, ये बुद्धि की दुर्मति है। हम सब यही तो करते हैं, यही तो चाहते हैं। इसका मतलब है मेरी दुर्मति जब तक सदमति में नहीं बदलेगी, विवेक में नहीं बदलेगी, तब तक मेरे अंदर संसार के प्रति वैराग्य कैसे आएगा और ईश्वर के प्रति अनुराग कैसे आए? इसीलिए सतपुरुष की वाणी पर हमें गहरा ध्यान करना होता है, गहरा मनन करना होता है, तब उसके अर्थों का सही पता लगता है और फिर सतपुरुष का मार्गदर्शन हमारी समझ में आता है, फिर हमारी जो चाल है वो बदलती है और ईश्वर प्राप्ति के लिए जीते हैं। क्यों? विरत भई निष्काम, मेरी जो वृत्ति है जिसको बुद्धि वृत्ति बोलते हैं, जिसको हम बुद्धि का विचार बोलते हैं, बुद्धि में विचार ही निष्काम हो जाता है, संसार की कोई कामना उसमें नहीं बसती, और वो निष्काम स्थिति सूरत की जो कहां ले जाती है, दसवें द्वार में ले जाती है, जहां मेरे गुरु का निवास है, जहां मेरे प्रभु का निवास है, जहां जाकर मैं निष्काम हो जाता हूँ आनंद में मन। ओम गणेश।